अंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरावन चारी, यमुना यमुना तीरावन चारी, राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे, जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, जय गौरनिताय गौरानिताय गौरनिताय जय गौरानिताय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस त्रिभुराजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोतरिषत् श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की नामाचार्य श्रील हरिदास प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय गंगा मैया जमुना मैया की जय तुलसी देवी की जय ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय मायापुर नवद्वीप धाम की जय पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय श्री श्री गौरताय की जय श्रील प्रभुपाद की उपस्थित भक्त वृंद की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है मंगलवार के कार्यक्रम में। आज से हम लोग महाभारत पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। श्रील प्रभुपाद अपने भागवत के तात्पर्यों में इसकी चर्चा करते हैं। और वे बतलाते हैं कि व्यास देव ने इस महान ग्रंथ की रचना की और फिर उसके बाद कैसे किस यज्ञ में इसको सुनाया गया इत्यादि, ये सारा वृत्तांत श्रील प्रभुपाद ने अपने तात्पर्यों में दिया है। और यही नहीं, कितने श्लोक कहाँ कहाँ कहे गए ये भी श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में अपने तात्पर्यों में देते हैं। तो आज हम लोग श्रील प्रभुपाद को प्रणाम करते हुए इस महान ग्रंथ महाभारत पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। वैसे तो इस ग्रंथ में बहुत सारी कथाएं हैं, भरा हुआ है ये ग्रंथ कथाओं से, लेकिन कथाओं के साथ साथ शिक्षाएं भी हैं। धर्म, अर्थ, इनकी शिक्षा, धर्म क्या है, मोक्ष क्या है, ऐसा वर्णन किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति, इसके महात्म्य में ऐसा कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति इस महाभारत को सुनता है तो सारे पाप उसके नाश हो जाते हैं। दरअसल ये इतिहास है, ये कोई दंत कथा नहीं है। हमारे सारे शास्त्र कई भागों में विभाजित हैं। शास्त्र ये शब्द संस्कृत की शस धातु से आता है, जिसमें ये बतलाया जाता है कि शस अर्थात नियंत्रण करना या शासन करना। तो शास्त्र ये मनुष्य जीवन के लिए, मनुष्य जीवन को कैसे चलाना है इसके लिए निर्देश पुस्तिका हैं। और इन शास्त्रों को कई भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले वेद हैं। वेद को भी पहले एक ही वेद था, व्यासदेव ने चार भागों में विभाजित कर दिया, चार वेद हुए। और फिर उन वेदों के ज्ञान को समझाने के लिए उपनिषद हैं। उपनिषदों में कई श्लोक होते हैं और श्लोकों के द्वारा तत्व को, दर्शन को उसमें प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन इन्हें समझना बड़ा कठिन होता है, इसीलिए उपनिषदों को समझाने के लिए, उपनिषदों के ज्ञान को समझाने के लिए पुराण दिए जाते हैं। पुराणों में कथाएं होती हैं। ज्ञान वही होता है जो उपनिषदों का ज्ञान है, जो वेदों का ज्ञान है, लेकिन केवल कथाओं के द्वारा, ऐतिहासिक घटनाओं के द्वारा उसको समझाया जाता है। साधारणतः देखा जाता है कि जब कथाएं कही जाती हैं, कहानियां कही जाती हैं, तो बड़ी आसानी से तत्व को समझा जाता है। एक बहुत प्रसिद्ध कथा है कि एक राजा का पुत्र कुछ सीख नहीं रहा था, बहुत प्रयास किया, सारे जितने भी वो शिक्षक लगा सकते थे लगाए, लेकिन वो पुत्र सीखा नहीं। तो फिर एक व्यक्ति ने कहा कि वो उसे सिखाएगा, और फिर वो उसे ले गया और उसने केवल उसको कथाएं सुनाई, और 6 महीने के अंदर बालक को बहुत ज्ञान आ गया। राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। राजा ने पूछा कि अरे इतने सारे शिक्षक जो कार्य नहीं कर पाए, आपने कैसे किया? तो उसने समझाया कथाओं के द्वारा, कहानियों के द्वारा। तो इसीलिए महाभारत जैसे इतिहास, ये ऐतिहासिक घटनाएं हैं। तो जब उपनिषदों के ज्ञान को पुराणों में समझाया जाता है, तो फिर पुराणों से एक चरित्र को लेकर उसका इतिहास बनाया जाता है। पुराणों में 5 चीजें बतलाई जाती हैं। नरसिंह पुराण में वर्णन आता है, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनुमंतराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम्। पुराणों में 5 चीजें होती हैं। सर्ग अर्थात प्रथम स्तर की सृष्टि, कैसे ये जगत बनता है, कैसे महाविष्णु के स्तर पर सृष्टि की रचना होती है, ये सर्ग है। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च, और फिर द्वितीय स्तर की जो रचना होती है। अब सबसे विनती है कि अगली बार जब आप आए तो अपने बुक लेकर आए ताकि लिखें, नहीं तो अगली बार फिर अगर यही प्रवचन हमने किया तो भी आपको लगेगा कि कितना नया पहली बार सुना है, लेकिन लिखेंगे और उसको कभी गलती से देखेंगे तो फिर ये नहीं लगेगा। तो प्रयास कीजिएगा कि लाएं और लिखें। तो सर्गश्च प्रतिसर्गश्च, प्रतिसर्ग अर्थात द्वितीय स्तर की रचना। इस सृष्टि की रचना दो स्तरों पर होती है, पहला महाविष्णु के स्तर पर और दूसरा ब्रह्मा जी के स्तर पर। अर्थात महाविष्णु थोड़े से तत्व मिलाकर दे देते हैं और ब्रह्मा जी फिर उन्हीं तत्वों को मिलाकर सारी सृष्टि की रचना करते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी को भी रचयिता कहते हैं, लेकिन असली रचयिता भगवान श्री कृष्ण हैं या महाविष्णु जो इस भौतिक जगत की रचना में भाग लेते हैं। तो सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च, फिर तीसरा उसमें वंश के बारे में होता है। हम सब जानते हैं कि दो प्रमुख वंश, इनकी चर्चा की जाती है, चंद्रवंश और सूर्यवंश। तो इसलिए वंशो, और फिर मनवंतराणि च। मनवंतराणि अर्थात किसी मनवंतर की। हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिवस में कई मनु होते हैं, 14 मनु होते हैं, और उनके समय को मनवंतर कहते हैं। तो इसीलिए मनवंतराणि च, मनवंतर की चर्चा इन पुराणों में होती है। आप लोग आगे आके बैठ सकते हैं। तो ये चौथा विषय होता है, और फिर इसके साथ ही साथ वंशानुचरितम, फिर उन वंशों में से किसी एक चरित्र को लिया जाता है और फिर उसकी चर्चा होती है। वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। तो ये पांच लक्षण पुराणों में होते हैं, सभी पुराणों में प्रायः यही पाया जाता है। अगर आप कोई भी पुराण लें, चाहे वो पद्म पुराण हो, नरसिंह पुराण हो या अन्य कोई भी पुराण, तो उसको ऐसे ही लिखा जाता है। फिर इन पुराणों में से किसी एक के चरित्र को लेकर उस पर पूरा व्याख्यान किया जाता है, उसके जीवन के बारे में, उसकी वंशावली के बारे में, उसके कार्यों के बारे में बड़े विस्तार से चर्चा होती है। इसको इतिहास कहते हैं। तो इतिहास जैसे रामायण, रामायण में भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन है, महाभारत इसमें पांडवों का वर्णन है। तो जब ऐसा किसी एक विशेष व्यक्ति के विषय में वर्णन होता है तो ये इतिहास कहलाता है। और फिर अन्य विभाग भी होते हैं, जैसे संहिताएं होती हैं, हम लोग रोज सुबह ब्रह्म संहिता पढ़ते हैं, ऐसे कई संहिताएं हैं, पंचरात्र हैं, ये सारे मिलाकर वैदिक साहित्य बनता है। तो महाभारत ये भी वैदिक साहित्य का हिस्सा है, ये ऐतिहासिक घटना है, ये इतिहास है, और ऐसा इतिहास जो दिव्य है। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि वैसे तो ये इतिहास है, कहानियां हैं, और ऐतिहासिक कहानियों को पढ़ने का क्या लाभ है। जैसे हम लोग भारत का इतिहास पढ़ते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़े बड़े कार्य किए, ये इतिहास है। मुगलों ने भारत पर राज्य किया, ये इतिहास है। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि जब इतिहास कृष्ण से संबंधित होता है तो वो दिव्य हो जाता है, और इसीलिए महाभारत रामायण ये हृदय को शुद्ध करने वाले इतिहास हैं, क्योंकि इनका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। जब तक कोई चीज भगवान कृष्ण से संबंधित नहीं है तब तक केवल वो व्यर्थ रहती है बातें, उसका कोई उपयोग नहीं होता। लेकिन जब भगवान से संबंधित हो जाती है वही इतिहास, वही कथाएं, तब वो दिव्य हो जाती हैं। और ऐसी दिव्य कथाएं, ऐसे दिव्य इतिहास हृदय को शुद्ध करते हैं, और फिर ऐसे शुद्ध हृदय से जब व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगता है तब फिर बहुत जल्दी उस स्तर को प्राप्त करता है जो सारे आध्यात्मवादियों के लिए चरम स्थान है, अर्थात भगवान के चरण कमल। तो इसीलिए हमें इन इतिहासों को पढ़ना चाहिए। वैसे भी चाहे हम कोई भी साहित्य को ले लें, वेदों के इतने सारे भाग हैं, हमने अभी वर्णन किए, लेकिन इन सब का उद्देश्य एक ही है और शास्त्रों में ही इसका वर्णन किया गया है। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदो अंतो च मध्ये च हरि ही सर्वत्र गीयते। तो वर्णन किया है कि वेद हो पुराण हो, वेदे पुराणे या फिर रामायण हो, वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा, भारत अर्थात महाभारत। तो चाहे वेद हो, रामायण हो, पुराण हो, महाभारत हो, आदो अंतो च मध्ये च, उसके आदि में, शुरुआत में, अंत में और मध्य में हरि ही सर्वत्र गीयते, केवल भगवान श्री हरि का गुणगान होता है, क्योंकि यही सर्वोच्च चीज है। जब परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि मेरे लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए जो मरणासन अवस्था में है, सर्वश्रेष्ठ कार्य क्या है, तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। वो कहते हैं कि हे राजन, हे भरतवंशी, भरतवंश में आने वाले, हम लोग महाभारत की चर्चा कर रहे हैं, ये भरतवंश की चर्चा है दरअसल। तो उन्होंने कहा, हे भरतवंशी, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, वो भगवान जो ईश्वर हैं, परम नियंता हैं, जो हरि हैं, हर लेते हैं, लोगों के दुख हर लेते हैं, तो ऐसे हरि, भगवान ईश्वरो हरि, इनके विषय में सुनना, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, उनका गुणगान करना, और न केवल गुणगान करना, स्मर्तव्यश्च, उनको स्मरण करना, ये मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कार्य है। और इसी के द्वारा चेष्टा भयम्, जितने भी भय हैं वो दूर हो जाएंगे और व्यक्ति अभय हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान का गुणगान, चाहे वो रामायण से हो, चाहे महाभारत से हो, पुराणों से हो, वेदों से हो, उपनिषदों से हो, ये गुणगान आवश्यक है। और यही उद्देश्य है कि हम इन अलग अलग चीजों को पढ़ें। तो महाभारत की शुरुआत बड़ी सुंदर तरीके से हुई। व्यास देव ने सबसे पहले इन श्लोकों को या इस पूरी महाभारत को अपने मन में रचा, लेकिन ये इतना व्यापक था, इतना बड़ा था कि व्यासदेव ने सोचा कि मेरे लिए संभव नहीं है लिखना, मुझे कोई चाहिए कि लिखे। आप लोग जानते हैं कितना बड़ा था ये? कोई बता सकते हैं कितने श्लोक हैं महाभारत में? हाँ, सुनाई नहीं दे रहा। 1 लाख? और कोई? खैर, उसका वर्णन अभी करेंगे। आपका उत्तर सही भी है और गलत भी है, अभी बताएंगे कैसे। तो बड़ा व्यापक था, बहुत बड़ा हो गया। तो व्यासदेव सोचने लगे कि अब क्या किया जाए, और ब्रह्मा जी उस समय उनके सामने आए। जैसे जब वाल्मीकि मुनि चिंता में थे कि रामायण की रचना कैसे होगी या ये मेरे मुख से क्या निकला है, तो ब्रह्मा जी आए थे और ब्रह्मा जी ने उनके अज्ञान को दूर किया। इसी तरह व्यासदेव के सामने भी ब्रह्मा जी आए, व्यासदेव ने बड़े आदर सम्मान से उनको स्थान दिया, उनका पूजन किया, और फिर व्यासदेव से उन्होंने प्रश्न किया कि व्यासदेव, बड़े चिंतित लग रहे हैं आप। खैर, मैं आपकी चिंता जानता हूं, तो इसलिए उन्होंने बतलाया ब्रह्मा जी ने कि आप गणेश जी को बुलाइए, गणपति बप्पा मौर्य। गणेश जी को बुलाइए और गणेश जी आपके इस कार्य को करेंगे। तो फिर व्यासदेव ने गणेश का स्मरण किया, गणेश जी आए, गणेश जी ने स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं लिखूंगा लेकिन मेरी कलम रुकनी नहीं चाहिए, मैं लिखता रहूंगा। और सब जानते हैं कि गणेश जी बड़े बुद्धिमान हैं। तो व्यासदेव ने कहा ठीक है, लेकिन जो भी आप लिखिए समझ लीजिएगा, बिना समझे मत लिखिएगा। तो फिर दोनों में ये हुआ और फिर व्यासदेव ने संपूर्ण महाभारत कही। ऐसा बताया जाता है कि संपूर्ण महाभारत, या वैसे तो बहुत सारे श्लोक हैं, लेकिन वर्णन ऐसा है कि महाभारत में 60 लाख श्लोक हैं। कौन बता रहे थे 1 लाख श्लोक? 60 लाख श्लोक हैं, लेकिन उसमें से 30 लाख श्लोक केवल देवलोकों में पाए जाते हैं, देवताओं के लोकों में, और जिनका वर्णन वहां पर स्वयं नारद मुनि करते हैं। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोगों ने महाभारत का वर्णन किया है। तो 30 लाख श्लोकों का वर्णन देवलोकों में नारद मुनि करते हैं। और फिर 15 लाख श्लोक ये पितृलोक में देवल ऋषि करते हैं। इसको श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्यों में लिखते हैं। तो 15 लाख श्लोकों को देवल ऋषि, ये नाम सुना है ना आपने, भगवत गीता में है असितो देवलो व्यास। तो देवल ऋषि ये 15 लाख श्लोक ये पितृलोक में प्रस्तुत करते हैं या प्रकट करते हैं या उसका गुणगान करते हैं। और फिर 14 लाख श्लोकों को शुकदेव गोस्वामी ने गंधर्वों और यक्षों के लिए कहा। कितने श्लोक हो गए? 59। कितने बचे? तो इस पृथ्वी पर केवल 1 लाख श्लोक हम लोगों के लिए हैं। तो इसलिए आपका आंसर सही भी था, उत्तर 1 लाख श्लोक, लेकिन गलत भी है। तो इस पृथ्वी पर केवल 1 लाख श्लोक हैं और उन्हें वैशंपायन ऋषि, जो कि व्यास देव के शिष्य हैं, उन्होंने कहा है। पहली बार उन्होंने इसका वर्णन किया और उसके बाद सूत गोस्वामी ने इसको पुनः दोहराया। तो अलग अलग स्थानों पर देवलोकों पर नारद मुनि ने, और पितृलोक में देवल ऋषि ने, और गंधर्वों के लिए और यक्षों के लिए स्वयं शुकदेव गोस्वामी ने, और मनुष्यों के लिए वैशंपायन मुनि ने यहां पर ये वर्णन किया। तो इस तरह से ये थोड़ा सा पर्दा बंद कर दे, भगवान के दर्शन खुले हुए हैं, तो पीठ करके नहीं बैठना चाहिए, इसलिए पर्दा है। तो वैशंपायन मुनि ने यहां पर जब जन्म जे, आप जानते हैं कि परीक्षित महाराज के बाद एक बहुत विशाल यज्ञ हुआ था। जब परीक्षित महाराज अपना देह छोड़ चुके, तक्षक ने उनको डस लिया, तब एक बहुत विशाल यज्ञ हुआ था कि पुत्र जन्मजय ने किया था, और उस यज्ञ में वो सारे सर्पों को मार डालना चाहते थे। तो ऐसे यज्ञ के समय वैशंपायन मुनि ने इस महाभारत को कहा था। तो बड़ा सुंदर इतिहास है। भगवान जब भी आते हैं उनकी लीलाएं इतनी मधुर होती हैं कि कानों को बड़ा आनंद देती हैं, साथ ही साथ हृदय में प्रवेश करती हैं, हृदय को आनंद देती हैं, और न केवल आनंद देती हैं बल्कि उसे शुद्ध कर देती हैं। जैसे आज का दिवस भी वामन द्वादशी का दिवस है, भगवान श्री वामन देव प्रकट हुए थे आज के दिवस पर। बहुत सुंदर वर्णन श्रीमद् भागवत में उनका किया गया है कि कैसे वो प्रकट हुए, क्या उनका रूप था। एक छोटे से बटु ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए और फिर बलि महाराज के यज्ञ स्थली में जाकर उन्होंने भिक्षा मांगी। देखिए भगवान को अपने भक्तों के लिए क्या क्या करना पड़ता है। वो भगवान जो मालिक हैं, स्वामी हैं, तीनों लोकों के स्वामी, तीनों लोकों क्या सारे ब्रह्मांडों के स्वामी, या फिर कहना चाहिए कि इस भौतिक जगत के स्वामी, आध्यात्मिक जगत के स्वामी, सबके स्वामी, वो जाकर भिक्षा मांगते हैं बलि महाराज से कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए। दरअसल दिखने में ऐसा लगता है कि वो इंद्र के लिए गए, इंद्र के लिए भूमि मांगने, लेकिन भगवान तो अपने भक्त का दर्शन करने गए थे, बलि महाराज का, और भक्त को दर्शन देने गए थे। ये आदान प्रदान होता है भक्त और भगवान के बीच में, ये प्रेम है भक्त और भगवान के बीच में। और इस बात को उन्होंने समझाया भगवान ने, जब ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया। हम सब जानते हैं कथा की, वामन देव उन्होंने दिव्य धोखे से बलि महाराज से सब कुछ छीन लिया, कुछ नहीं रहा बलि महाराज के पास, और सब लोग बलि महाराज की भर्त्सना कर रहे थे कि हाँ ये सही है, इनको अहंकार हो गया था, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, इत्यादि इत्यादि। यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी कह रही थी, साधारणतः पत्नी को पति का सहयोग करना चाहिए हर स्थिति में, लेकिन वहां पर पत्नी भी कहने लगी भगवान से कि आपने जो किया बहुत अच्छा किया, बहुत अहंकार हो गया था इनको अपने ऐश्वर्य का। उनकी पत्नी भी कहने लगी ऐसे। तो सब लोग जब ऐसे कह रहे थे तो ब्रह्मा जी के हृदय में थोड़ा सी शंका हुई कि अरे बलि महाराज ने सब कुछ दे दिया अपना, और फिर भी भगवान ने इन्हें बंदी बना लिया है। वो भगवान जो केवल तुलसी दल मात्रेणा, केवल तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं, तीनों लोक समर्पित कर दिए बलि महाराज ने, फिर भी बंदी बनाया। तो उन्होंने प्रश्न किया कि मुझे समझ नहीं आया प्रभु आपकी ये लीला, आप तो प्रसन्न हो जाते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बस उससे प्रसन्न हो जाते हैं, और यहां इतना सब दे दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया, और क्या करेंगे। तो फिर भगवान उस समय बतलाते हैं कि ये जो उन्होंने किया ये बलि महाराज के गुणगान के लिए किया, ताकि आगे आने वाले वंश, आगे आने वाले लोग ये जान लें कि भक्ति क्या है और समर्पण क्या है। समर्पण, आत्मसमर्पण, ये हम लोग बलि महाराज से सीखते हैं। सब कुछ समर्पित कर दिया उन्होंने, कुछ नहीं रखा अपने लिए। और जब भगवान ने कहा कि 3रा पग कहां रखूं, तो उन्होंने कहा मेरे सिर पर रखिए, अपने आप को भी दे दिया। तो ये बलि महाराज हैं, इसलिए हम सीखते हैं उनसे कि कैसे बलि महाराज ने भगवान श्री वामन देव के प्रति पूर्ण समर्पण किया, ये जानते हुए कि जो मैं कह रहा हूं, जो मैं दे रहा हूं, वो मेरे लिए भौतिक दृष्टि से बहुत ही नुकसानदायक है, मुझे हानि होगी, सब कुछ चला जाएगा। शुक्राचार्य ने कहा सब कुछ चला जाएगा तुम्हारा। वैसे एक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान कई चीजें पूरी कर रहे थे। जब देवता गए थे भगवान के पास, तो भगवान ने कहा था देखो अभी बलि बहुत शक्तिशाली है, और उसको शक्ति आ रही है ब्राह्मणों से। अब जब तक वो ब्राह्मण का अपमान नहीं करेगा, तब तक उसकी शक्ति जाएगी नहीं, और बलि वो ब्राह्मण का अपमान करेगा नहीं, तो क्या करना चाहिए। इसीलिए भगवान गए थे मांगने के लिए, क्योंकि जब शुक्राचार्य ने कहा कि मत दो, बलि महाराज ने कहा नहीं मैं तो दूंगा, ये अपमान हो गया ब्राह्मण का, गुरु का अपमान हो गया, उनकी बात को नहीं सुना, तो फिर अपनी शक्ति को खो बैठे। तो ऐसे भगवान अन्य कई लीलाओं में भी देखते हैं कि कैसे एक ही साथ कई चीजों को पूरा करते हैं। नरसिंहदेव के रूप में भी आते हैं तो कई चीजें करते हैं। प्रमुखता आते हैं सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने भक्त की इच्छा को, अपने भक्त के कहे हुए शब्द को पूरा करने के लिए आते हैं। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। तो इसी तरह भगवान जब भी आते हैं, जिस रूप में, चाहे वामन रूप में हो, मत्स्य अवतार हो, कूर्म हो, वराह हो, भगवान आनंद देते हैं भक्तों को, और उनसे संबंधित सभी लीलाएं ये आनंद देने वाली हैं। और इसी प्रकार ये महाभारत की कथा ये भी बहुत आनंद देने वाली है, क्योंकि कृष्ण से संबंधित है। इस कथा में, इस कथा का सारा सार केवल 700 श्लोकों में है, और वो है भगवत गीता। हम लोग जानते हैं कि ये सारी महाभारत की रचना इतने बड़े विशाल महाभारत की रचना हुई ताकि भगवान बड़े आराम से उस तत्व को भगवद गीता को हमें दे सके। अगर केवल भगवद गीता देते, इतनी सारी व्यवस्था नहीं करते, तो शायद हम लोग ध्यान नहीं देते। लेकिन अभी ध्यान जाता है, अरे हाँ इतना बड़ा युद्ध हुआ, अर्जुन कष्ट में था, भीष्म थे, द्रोण थे, और फिर उसके बाद हाँ भगवद गीता आ गई। हम लोग ये जो प्रवचन महाभारत पे कर रहे हैं, इनमें प्रमुखता कथा तो होगी जो महाभारत की है, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसी कथाएं होंगी जो शायद आप लोगों ने न सुनी हो, जो महाभारत में हैं, और उनसे क्या प्रमुख शिक्षाएं हम लोग ग्रहण करते हैं। और फिर विशेष करके हम लोग चर्चा करेंगे उन 18 दिनों की जो असली महाभारत हुआ, असली युद्ध हुआ, तो उन 18 दिनों की भी हम चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर वर्णन आचार्यों ने किया है अपनी टिप्पणियों में कि क्या मनोभाव था भीष्म का, क्योंकि हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं कि भीष्म जो इतना प्रेम करते थे पांडवों से और उनके लिए प्रमुख सेनापति बनना, ऐसी सेना का जो पांडवों को मारना चाहती है, जो पांडवों का कृष्ण का विरोध कर रही है, तो बड़ा कठिन था उनके लिए, लेकिन उन्होंने क्यों स्वीकार किया, क्या मनोभाव था, ये सारी चर्चाएं हम लोग उस समय में करेंगे जब 18 दिनों की चर्चा प्रारंभ होगी। और ये चर्चा बड़ी ही, वैसे देखा जाए युद्ध है तो उसकी चर्चा क्या करनी है, केवल कह सकते हैं 18 दिनों में युद्ध समाप्त हो गया, इतने सारे लोग मारे गए, हरे कृष्णा। युद्ध की क्या चर्चा करनी है, किसने किसको पकड़ा, कैसे मारा, भीम ने क्या किया, कितनी हड्डियां तोड़ी, कितने सर तोड़े, लेकिन क्योंकि कृष्ण से संबंधित है इसीलिए सुनेंगे। और उसका केवल उतना ही नहीं, बहुत सुंदर वर्णन श्री संप्रदाय के आचार्यों ने इन प्रमुख 18 दिनों के लिए किया है, तो उसको भी हम लोग जैसे जैसे हर मंगलवार आगे बढ़ेगा हम लोग सुनेंगे। तो आज प्रारंभ करेंगे जन्मजय के यज्ञ से। जन्मजय ने प्रश्न किया ऋषि मुनियों से कि आप बतलाइए कि ऐसा क्या हुआ था, मेरे पिता को क्या हुआ था, क्यों उनकी मृत्यु हुई, उसका वृत्तांत बताइए, विस्तार से बताइए। तो फिर उस समय ऋषियों ने बतलाया कि किस प्रकार परीक्षित महाराज वो गए थे जंगल में और कैसे फिर उनको प्यास लगी, भूखे थे, प्यासे थे, ऋषि के आश्रम में गए, वहां पर वो ध्यान मग्न थे, और फिर क्रोधवश परीक्षित महाराज ने एक मृत सर्प उनके गले में डाल दिया, और फिर उस ऋषि के पुत्र ने श्राप दिया, शमिक ऋषि के पुत्र ने, शिंगी ने, कि 7 दिन के अंदर इनकी मृत्यु सांप के काटने से हो जाएगी। एक स्थान पर, एक पुराण में ऐसा वर्णन है कि जब तक्षक मारने आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि कश्यप मुनि वो जा रहे हैं, वो भी उसी तरफ जा रहे हैं। तक्षक ने सोचा कि ये कश्यप मुनि जा रहे हैं तो थोड़ा घबरा गए, किस लिए जा रहे हैं। अब कश्यप मुनि देखा जाए तो एक दृष्टि से सारे सर्पों के पिता हैं, है ना, कश्यप मुनि की ही पत्नी थी, क्या नाम है, सर्पों की माता कद्रु, और उनकी बहन वेंता। तो ये दोनों बहनें, ये कथा हम लोग कई बार सुन चुके हैं कि ये दोनों बहनें थीं, और किस प्रकार कश्यप मुनि ने एक समय कहा कि दोनों को वरदान दिया, कद्रु ने कहा कि मुझे 100 पुत्र चाहिए, सर्पों की कामना उसने की, और विनता ने केवल 2 पुत्रों की कामना की। तो बताया जाता है कि उस समय सर्प निकले पहले और 2 पुत्र निकले नहीं, अंडे में थे, और एक को जल्दबाजी में, क्योंकि विनता सोच रही थी बहुत वर्ष हो गए, उस स्थान पर तो लिखा है 500 वर्ष तक बाहर नहीं आए थे, हम लोगों के लिए सोचना कठिन है 500 वर्ष तक तो जीवित ही नहीं रहेंगे, तो लेकिन ये उस समय की बात है बहुत पहले की। तो फिर जल्दबाजी में उसने उनको खोल दिया, वो पूरा तरह से विकसित नहीं हुआ था, श्राप मिला कि तुम्हारे इस कारण कार्य के कारण तुम्हें दासी बनना पड़ेगा। फिर आगे चलकर वो कद्रू की ही दासी बनी, अपनी ही बहन की। दोनों में एक शर्त लगी थी, बड़ी सरल सी शर्त थी, लेकिन वो हार गई और हारी भी सर्पों के कारण। शर्त ऐसी थी कि घोड़ा हो जिसकी, पूरा सफेद घोड़ा लेकिन पूंछ काली होनी चाहिए। अभी वो समय नहीं है उतना सारा विस्तार में जाने का, लेकिन तो फिर काली पूंछ वाला कोई घोड़ा नहीं मिला, तो जितने सर्प थे वही पूंछ पर लपेट गए सब। तो दूर से पूंछ काली दिखने लग गई और इस तरह से विनता जो थी वो हार गई और उन्हें दासी बनना पड़ा। लेकिन बाद में आगे चलकर उनके पुत्र गरुड़, उन्होंने उनको मुक्त किया। उन्होंने सर्पों से पूछा था कि आप क्या चाहते हैं, कैसे मेरी माँ को मुक्त करेंगे? तो उन्होंने कहा कि आप स्वर्ग से देवताओं से अमृत लेकर आओ। तो फिर गरुड़ जी गए थे और देवताओं से बड़ा भयंकर युद्ध किया, और देवताओं के बीच से जहां उन्होंने संभाल कर रखा था अमृत का कलश, उसको उठा कर ले आए थे वो। ये उदाहरण सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में देते हैं, जहां वो रुक्मिणी विवाह के प्रसंग की चर्चा करते हैं। तो वो कहते हैं कि श्री कृष्ण रुक्मिणी को अन्य राजाओं के बीच से ऐसे उठा के ले गए जैसे गरुड़ देव अमृत के कलश को देवताओं के बीच में से उठाकर ले आए थे। तो ये उदाहरण को सुखदेव गोस्वामी बतलाते हैं। तो इस तरह से वो ले गए उठाकर, और फिर अपनी माता को उन्होंने छुड़वाया। तो तक्षक ये देख रहे थे कि कश्यप मुनि जा रहे हैं, तो उन्होंने उनको पूछा भाई आप किस लिए जा रहे हो, क्या कारण है? तो उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि कोई सर्प आकर परीक्षित महाराज को काटने वाला है, परीक्षित महाराज बड़े अच्छे भक्त हैं, तो मैं सोच रहा हूं कि जैसे ही वो आकर काटेगा मैं उसको ठीक कर दूंगा, उसके विष का जो प्रभाव है उसको समाप्त कर दूंगा। तो तक्षक सोचने लगा, रहे ये तो गड़बड़ हो गई, मैं जाकर काटूंगा और ये इनको पुनर्जीवित कर देंगे, कुछ फायदा नहीं होगा। क्योंकि तो फिर उस समय उन्होंने उनसे बातचीत की और फिर किसी न किसी तरह उनको वहां से वापस भेज दिया, और फिर वे चले गए और उन्होंने जाकर परीक्षित महाराज को डस लिया और परीक्षित महाराज की मृत्यु हुई, सारा वो स्थान जल गया। तो जब ये बात जन्मजय ने सुनी तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा ऋषि और ऋषि पुत्र ने शाप दिया, कोई बात नहीं, गलती नहीं है उनकी इतनी बड़ी, लेकिन तक्षक जो सर्प है उसकी ही गलती है, क्योंकि कश्यप मुनि आ रहे थे उसने रोक दिया, तो उसकी गलती है। इसलिए मैं एक ऐसा यज्ञ करूंगा जिसमें सारे सर्पों को बुला बुला कर उसको अग्नि में डाल दूंगा सारे। तो फिर उसने ऐसे बड़े बड़े पुरोहितों को पुरोहितों की व्यवस्था की और यज्ञ प्रारंभ हुआ, बड़ा विशाल यज्ञ। और इस यज्ञ में अलग अलग नाम ले लेकर अलग अलग प्रकार के सर्पों को बुलाया गया, और सब लोगों ने देखा कि वो सबके सामने अग्नि में जाने लगे, और वे लोग इंतजार कर रहे थे कि तक्षक कब आए, क्योंकि तक्षक भी आना चाहिए, सबसे पहले तो उनको ही मारना चाहते थे। लेकिन तक्षक उस समय भागकर इंद्रदेव के पास चले गए रक्षा के लिए, और वे आए नहीं। और फिर जब यज्ञ के मंत्रों के द्वारा बड़ी कठिनाई से बुलाया भी गया, तो एक मुनि थे जिनका नाम था आस्तिक, उनके कहने पर, उनके मांगने पर तक्षक की जीवन को बचा लिया गया। ये बड़े विस्तार की कथा है। तो इस तरह से तक्षक का जीवन बच गया, अन्य भी सर्पों का, वासुकी इत्यादि भी, उनका भी जीवन बचा। तो फिर उस समय महाभारत का वर्णन वैशंपायन मुनि ने, ऋषि ने वहां पर प्रारंभ किया। तो सबसे पहले तो उन्होंने बड़े संक्षेप में पूरी महाभारत की कथा बता दी, क्या क्या हुआ, पांडवों के साथ क्या हुआ, कौरवों ने कैसे किया, फिर अंत में क्या हुआ, युद्ध हुआ, बहुत ही संक्षेप में। तो जब जन्मजय ने संक्षेप में सुना तो उसकी जो उत्कंठा थी वो बढ़ गई, और उसने फिर उनसे कहा कि आप विस्तार में बतलाइए, ऐसे संक्षेप में नहीं। जैसे ऐसा होता है कि कभी कभी किसी को अगर जैसे भगवान ऐसा करते हैं कि वो चॉकलेट खिला देते हैं या कुछ मीठा खिला देते हैं, फिर बोलते हैं अभी खाना है तो थोड़ी मेहनत करो। जैसे नारद मुनि के साथ किया, नारद मुनि ने बड़ी तपस्या की भगवान के दर्शन के लिए, जंगलों में जाकर, घने जंगलों में, और जब भगवान ने उनको दर्शन दिए तो केवल कुछ क्षणों के लिए, और फिर भगवान गायब हो गए। नारद मुनि बड़ा प्रयास कर रहे थे कि किसी न किसी तरह फिर से दर्शन हो जाए, दर्शन नहीं हुए। और फिर भगवान ने कहा कि नारद अब इस जन्म में दर्शन नहीं होंगे, अब अगले जन्म में दर्शन होंगे, तब तक तपस्या करते रहो। तो इसी तरह भगवान करते हैं, थोड़ा सा दे दिया और उसके बाद फिर आप चाहिए तो आपको पैसा देना पड़ेगा, प्राइस देना पड़ेगा उसका। तो इसी तरह ऋषि भी हैं, उन्होंने थोड़ा सा दे दिया उनको टेस्ट। जैसे होता है ना, कई कई कंपनियां कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं, कुछ नया चीज लाती हैं, तो उसको पहले फ्री बांटती हैं, आप फ्री ले लीजिए, फिर आदत पड़ जाएगी तो अब आप पैसा दीजिए। जैसे मोबाइल फोन्स हैं, जब नई नई सब कंपनियां आई थी तो उन्होंने 2 महीने के लिए मुफ्त, आप इस्तेमाल कीजिए कोई पैसा नहीं, फ्री। तो व्यक्ति बहुत खुश हो गया, अरे फ्री यूज करना है, 2 महीने तक फ्री यूज किया, बहुत खुश। और 2 महीने के बाद आदी हो गए, अब फिर वो जितना भी पैसा मांगेंगे उतना देना पड़ेगा, क्योंकि आदत हो गई है। तो इसी तरह थोड़ी सी कथा सुनाई और फिर जब रस आया, स्वाद आया, तब उन्होंने कहा विस्तार में सुनाइए। तो फिर विस्तार से वो सुनाने लगे और कथा उन्होंने बहुत पहले से प्रारंभ की, दुष्यंत महाराज की कथा सुनाई, सत्यवती के जन्म की कथा सुनाई, बहुत विस्तार में। महाभारत में बड़े विस्तार से इन कथाओं का वर्णन किया गया है। दुष्यंत महाराज का भी वर्णन है कि कैसे दुष्यंत महाराज बड़े प्रतापी थे, और एक समय जब वो जंगल में गए तो उस समय शिकार करते करते ऐसा वर्णन है कि वो अपने सारे सैनिकों को लेकर गए थे, पूरी बहुत बड़ी सेना गई थी, लेकिन एक स्थान पर जाकर वो एक ऋषि को मिलना चाहते थे, तो उन्होंने कहा आप सब यहीं रुकिए, मैं अकेला जाऊंगा। फिर वो अंदर जाते हैं, ऋषि उस समय होते नहीं हैं अपने कुटीर में, लेकिन वहां उनको एक बड़ी सुंदर युवती मिलती है। दुष्यंत महाराज का हृदय उसको देखकर उसके प्रति प्रेम से भर जाता है, उनको विवाह की इच्छा होती है, लेकिन दुष्यंत महाराज सोचते हैं कि मैं एक क्षत्रिय हूं और मैं क्षत्रिय धर्म का पालन करता हूं, इसलिए अगर मेरे हृदय में इस युवती के प्रति ऐसी भावना आ रही है तो ये युवती ब्राह्मणी नहीं हो सकती, ये निश्चित ही क्षत्रिय है। देखिए कितना अच्छी व्यवस्था उस समय थी, लोग कैसे नियमों का पालन करते थे, उनको इतना विश्वास था अपने ऊपर, क्योंकि मैं क्षत्रिय धर्म का पूर्ण पालन करता हूं और मेरे हृदय में अगर इस युवती के प्रति कोई भी ऐसी भावना आ रही है तो ये युवती ब्राह्मण की पुत्री नहीं हो सकती। अर्थात अगर वो ब्राह्मण की पुत्री होती तो मेरे हृदय में इसके प्रति गलत भाव नहीं आता, ये क्षत्रिय है। लेकिन है फिर भी अपने आप को बता रही है ऋषि की पुत्री। तो फिर उन्होंने फिर से पूछा कि आप ठीक ठीक बताओ आप कौन हो। तो उस समय उसने बतलाया कि कैसे विश्वामित्र मुनि और मेनका के साथ में आने से इस बालिका का जन्म हुआ था, और फिर इसको छोड़ दिया गया था जंगल में, वो छोड़कर चली गई थी अपने वापस स्थान पर, और इसकी देखभाल जंगल के प्राणी कर रहे थे, और विशेष करके बहुत सुंदर सुंदर पक्षी, और पक्षियों को शकुंत कहते हैं, और इसीलिए उसका नाम पड़ा शकुंतला। जब क्योंकि जब ऋषि गए, मुनि गए वहां पर, और उन्होंने देखा कि अरे ये बच्ची है छोटी सी, तो उन्होंने देखा कि वो पक्षियों से घिरी हुई थी, इसीलिए उसका नाम रखा शकुंतला। तो ऐसे उन्होंने वर्णन किया दुष्यंत महाराज का कि कैसे फिर उनके एक पुत्र हुआ जिसको पहले तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसके विषय में अलग अलग कथाएं हैं, एक कथा ये कहती है कि दुष्यंत महाराज भूल गए थे शकुंतला को, फिर शकुंतला आती है, वो बहुत प्रयास करती है, फिर एक अंगूठी देती है, ये एक तरह की कथा है। दूसरा एक पुराणों में कथा आती है कि दुष्यंत महाराज के पास जब शकुंतला आई काफी समय बाद, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया था, तो उस समय दुष्यंत महाराज ने जानते हुए पहचानते हुए, वो पहचान गए थे शकुंतला को, लेकिन उन्होंने कहा मैं तुम्हें जानता नहीं हूं, तुम कौन हो, कहां से आई हो, और तुम जिसे मेरा पुत्र कह रही हो इसका क्या प्रमाण है। तो शकुंतला को बड़ा दुख हुआ और उस समय बहुत सुंदर संवाद वहां पर हुआ। शकुंतला ने प्रस्तुत किया अपने विषय में, लेकिन फिर भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया और शकुंतला से कहा कि तुम चली जाओ। तो फिर ऐसे समय में जब शकुंतला जाने लगी तो फिर आकाशवाणी हुई, और जिस आकाशवाणी में उन्होंने बतलाया कि हे राजन, ये तुम्हारा ही पुत्र है, शायद तुम भूल गए हो कि ऐसे ऐसे समय में आखेट के समय तुम वहां गए थे और गंधर्व रीति से तुमने विवाह किया था, और तुम इसको भूल गए हो, ये तुम्हारा ही पुत्र है, बड़ा प्रतापी है, आगे चलकर सारे पृथ्वी का पालन करेगा, आप इसको स्वीकार कीजिए और इसका नाम भारत रखिए। तो जब ऐसा हुआ तो उन्होंने तुरंत शकुंतला को स्वीकार किया, और फिर उन्होंने शकुंतला से बतलाया कि अगर मैं तुम्हें ऐसे ही स्वीकार कर लेता तो फिर लोग ये कहते, या लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते, ये गलत आरोप लगाते, तुम्हारे ऊपर आक्षेप करते, इसीलिए मैंने उसको बचाने के लिए कि कोई तुम्हारे ऊपर या इस पुत्र के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाए कि ये सही है या नहीं, मैंने ये किया, ताकि अब आकाशवाणी होने से ये सिद्ध हो गया कि ये मेरा ही पुत्र है, आगे चलकर अब कोई इस बारे में प्रश्न नहीं करेगा, इसीलिए मैंने ऐसा किया। तो फिर दुष्यंत महाराज के साथ वो रहने लगे। फिर उनकी वंशावली का आगे वर्णन हुआ, जिसमें शांतनु महाराज का वर्णन वो करते हैं। वैसे महाभारत में बड़े विस्तार से कई चीजों का वर्णन हुआ है, विशेष करके वंशावली का। शांतनु महाराज का वर्णन करने के पहले सत्यवती, जो हम सब जानते हैं कि शांतनु महाराज की पत्नी बनी, उनका जन्म कैसे हुआ उसका भी वर्णन महाभारत में किया गया है। तो बतलाया गया है कि वो भी एक अप्सरा की पुत्री थी, किसी कारण से उनका जन्म एक मछली के शरीर से हुआ, और साथ साथ एक पुत्र और एक पुत्री दो निकले थे उसमें से, मछली से, जो मछुआरा लेकर राजा के पास गया। राजा ने पुत्र को स्वीकार किया अपने पुत्र के रूप में और पुत्री उन्हें दे दी। तो फिर वो पुत्री जो मछुआरे की पुत्री के रूप में रही, सत्यवती, और फिर पराशर मुनि से उन्हें एक बड़ा ही तेजस्वी पुत्र व्यासदेव प्राप्त हुए। और व्यासदेव जैसे ही, ऐसा वर्णन है व्यासदेव का कि उनको कोई जाकर किसी गुरुकुल में पढ़ाई नहीं करनी पड़ी, जन्म से ही सारे वेदों का ज्ञान, सारे शास्त्रों का ज्ञान उन्हें था। और फिर उसी समय वो वहां से चले गए, अपनी माँ को उन्होंने ये कहा कि जब भी आपको आवश्यकता हो आप मुझे कहिए, मुझे स्मरण कीजिए, मैं आपके पास आ जाऊंगा। तो फिर ऐसा कहकर वो वहां से चले गए। व्यासदेव ये भगवान के अवतार माने जाते हैं, शक्त्यावेश अवतार, जिन्हें भगवान ने शक्ति प्रदान की है शास्त्रों को लिखने की, लेखन की शक्ति। भगवान के अवतारों में कई तरह के अवतार होते हैं, प्रमुखतः छह प्रकार के अवतार भगवान के होते हैं, जैसे लीला अवतार, सबसे पहले पुरुष अवतार इस भौतिक जगत में हम लोग देखते हैं। पुरुष अवतार अर्थात तीन पुरुष जो हैं, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु को पुरुष अवतार कहते हैं। फिर गुण अवतार होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भी भगवान के अवतारों में आते हैं, तो इनको गुण अवतार कहते हैं। और फिर भगवान के मनवंतर अवतार, अर्थात हर मनु में, हर मनु के समय में भगवान एक अवतार लेते हैं, उनको मनवंतर अवतार कहते हैं। फिर लीला अवतार जिसमें भगवान लीला करते हैं, फिर युग अवतार जो हर युग में भगवान युग धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, उन्हें युग अवतार कहते हैं, और फिर शक्तावेश अवतार। ये छह प्रकार के अवतार होते हैं। शक्तावेश अवतारों में भी दो प्रकार के होते हैं, एक वे जो विष्णु तत्व होते हैं और दूसरे वे जो जीव तत्व होते हैं। विष्णु तत्वों में, शक्तावेश अवतार की श्रेणी में विष्णु तत्वों में अनंत शेष आते हैं और अन्य सभी अवतार जीव तत्वों में आते हैं। जैसे परशुराम जी को भी भगवान का अवतार माना जाता है, लेकिन वो जीव तत्व हैं, वो विष्णु नहीं हैं, वो शक्तावेश अवतार हैं। नारद मुनि को भी भगवान का अवतार माना जाता है, लेकिन वे भी जीव हैं। इसी तरह व्यास देव को भी भगवान का अवतार माना जाता है, लेकिन वे जीव हैं, मगर हैं भगवान के अवतार, भगवान के द्वारा शक्ति उन्हें प्राप्त है, इसीलिए वेदों की रचना, शास्त्रों की रचना वो करते हैं। तो इस प्रकार व्यास देव का जन्म हुआ। व्यास देव के विषय में कहा जाता है कि जो भी वो लिखते हैं, जो कहते हैं, वो पूर्ण सत्य है, क्योंकि वो भगवान की वाणी है। तो इस प्रकार से सत्यवती रहने लगी उस मछुआरे के घर में, और फिर एक समय शांतनु महाराज, जो पहले ही विवाह कर चुके थे गंगा देवी से, उन्हें पुत्र भी प्राप्त था भीष्म के रूप में देवव्रत उस समय, तो जब वो उनकी ओर आकर्षित हुए और उनकी इच्छा हुई, और उस समय हम सब जानते हैं कि कैसी शर्त उनके पिता ने रखी, और उनके पुत्र देवव्रत ने इस भीषण प्रतिज्ञा को किया। दरअसल कई बार लोग पूछते हैं कि भीष्म ने ब्रह्मचारी रहने का ही तो व्रत लिया था, इसमें इतना भीषण क्या बात थी, खास करके ब्रह्मचारी पूछते हैं कौन सी बड़ी बात है, ऐसे कौन से उनका नाम भीष्म पड़ गया, ऊपर से लोग फूलों की वर्षा करने लगे, देवता सारे जगत में फैल गए, बोले यहाँ तो इतने सारे प्रभुपाद ने इतने सारे भीष्म बनवाए, जो जीवन भर ब्रह्मचारी रहते हैं उनकी भी तो प्रतिज्ञा भीष्म है। दरअसल ऐसा था कि भीष्म जिस वातावरण में थे, जिस अवस्था में थे, उस अवस्था में अर्थात प्रायः पूरी पृथ्वी का राज्य उनके हाथ में था, उनको दिया था उनके पिता ने, फिर वो क्षत्रिय परिवार से थे और बड़े शक्तिशाली थे और बहुत युवा अवस्था में थे, उनके लिए अभी पूरा जीवन बाकी था, और ऐसे उस समय में ऐसी प्रतिज्ञाएं कोई क्षत्रिय लिया नहीं करते थे। क्षत्रियों के लिए बड़ा कठिन होता था ऐसे रजोगुण के वातावरण में रहते हुए ऐसी प्रतिज्ञाओं का पालन करना, और वो भी जीवन भर के लिए। तो इसी कारण से जब उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा ली कि वो जीवन भर विवाह नहीं करेंगे और जो भी राज्य पर बैठेगा वे उसको अपने पिता के रूप में देखेंगे इत्यादि इत्यादि, तो फिर उनका नाम भीष्म पड़ गया, क्योंकि ये बड़ी ही भीषण प्रतिज्ञा थी उस समय के लिए। तो शांतनु महाराज की कथा वे बतलाने लगे विषमपायन मुनि कि किस प्रकार सत्यवती से उनका विवाह हुआ, फिर विचित्र वीर्य की कथा, कैसे विचित्र वीर्य बड़ा ही साहसी योद्धा था, और फिर वो कथा को करते करते वो आते हैं व्यास देव ने कैसे तीन पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनमें से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, तीनों पुत्र उत्पन्न हुए व्यास देव से। तो ऐसे इन कथाओं को जब हम लोग सुनते हैं, विशेष करके महाभारत की कथाओं को, तो बड़ा ही भ्रांति में डालने वाली कथाएं हैं, क्या हो रहा है, कहां से किसका संबंध है, ये सीधे सीधे कार्य कोई करते ही नहीं है इसमें। दरअसल अगर कलयुग की दृष्टि से देखा जाए तो ये तो बड़ी अच्छी कथा है, कोई इसमें गलती नहीं, कोई भ्रांति नहीं है, लेकिन फिर भी शास्त्रों की दृष्टि से ऐसी कथाओं को क्यों इतना महत्व दिया गया है, इसका कारण ये है कि भगवान जब लीलाएं करते हैं, और ये उस समय का वर्णन उनमें किया गया था जब क्षत्रियों के लिए बहुत सारी चीजों की अनुमति थी, क्षत्रिय काफी चीजों को कर सकते थे क्योंकि वो क्षत्रिय धर्म का पूर्ण रूप से पालन करते थे। अगर कोई व्यक्ति क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करता, केवल नाम के लिए अपने आप को क्षत्रिय कहता है, तो उसके लिए कई कार्य वर्जित होते हैं। आजकल के समाज में लोग अपने आप को केवल नाम के क्षत्रिय बतलाते हैं और ऐसे क्षत्रिय मानकर कई ऐसे कार्य करते हैं जिनको दिखलाते हैं कि देखिए वे क्षत्रिय पहले भी तो ऐसा करते थे। इसलिए जो व्यक्ति आजकल अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं वो सबसे ज्यादा मांसाहार, शराब पीना, इन कार्यों को करते हैं, कहते हैं क्षत्रियों को ये सब अलाउड है, अनुमति है। ऐसा नहीं है। क्षत्रियों को अनुमति इसलिए थी ताकि वो अपने रजोगुण का इस्तेमाल सेवा कर सकें, इस्तेमाल करके प्रजा की सेवा कर सकें, प्रजा का रक्षण कर सकें, क्योंकि युद्ध में उन्हें युद्ध में मारना होता था, खून देखना होता था, हथियार चलाने होते थे प्रजा के रक्षण के लिए, अपने लिए नहीं। और फिर उसके लिए जब प्रजा के रक्षण के लिए वो तैयार होते थे तो वो तैयारी उनकी होती थी जब वो जाकर खेला करते थे, आखेट करते थे, जंगल में जाते थे। और केवल इतना ही नहीं, जंगल में जाकर किसी मासूम प्राणी को ही नहीं मारते थे। केवल शांतनु महाराज के बारे में वर्णन किया गया है कि इतने शक्तिशाली थे कि एक समय जब जंगल में गए वो आखेट खेलने के लिए, तो उन्होंने वहां पर जितने भी शेर थे उन सबको मार गिराया और बाकी शेर घबरा कर भाग गए उस जंगल को छोड़कर। ये शक्ति थी उनकी। हाँ, लेकिन हमारी शक्ति, हमारा बल जब हम भगवान की सेवा में इस्तेमाल नहीं करते तो ये व्यर्थ हो जाता है। शांतनु महाराज की एक कथा नरसिंह पुराण में बताई जाती है कि कैसे शांतनु महाराज के पास एक बड़ी सुंदर शक्ति थी कि वो देवताओं के रथ पर बड़ी आसानी से विराजमान होकर युद्ध किया करते थे। लेकिन एक समय जब वो जा रहे थे रथ पर चढ़ने के लिए, बहुत जल्दबाजी में थे, नरसिंह पुराण में एक कथा आती है, तो उन्होंने नरसिंह देव को अर्पण की हुई माला निर्माल्य इसको लांग दिया, इसके ऊपर से चले गए, पांव नहीं रखा लेकिन लांग गए, केवल उसको क्रॉस कर लिया और जल्दबाजी में चले गए। और जैसे ही गए फिर ऊपर चढ़ने लगे तो वो रथ पर चढ़ नहीं पाए। बड़ा आश्चर्य हुआ शांतनु महाराज को, ऐसा कभी हुआ नहीं था कि रथ पर नहीं चढ़ पा रहे हैं। तो फिर बड़े दुखी हो गए, क्या किया जाए, उपाय नहीं समझ में आया। तब फिर नारद मुनि से उन्होंने पूछा, नारद मुनि आए तो नारद मुनि ने उनको बतलाया कि आपने एक छोटा सा अपराध कर दिया है, लेकिन वो अपराध क्योंकि नरसिंह देव के प्रति है इसलिए आपको उसका फल मिल रहा है। और फिर उन्होंने कथा सुनाई कि यही अपराध इंद्र के पुत्र ने किया था एक समय, जयंत ने। जयंत वैसे भी बड़े अपराध करता रहता है, रामायण में भी वर्णन आता है, महाभारत में कई स्थान पर उसका वर्णन है। आगे जब हम लोग अन्य कथाओं को सुनेंगे जो शिक्षाप्रद कथाएं हैं, आज तो केवल हम लोग इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि महाभारत क्या है या शुरुआत उसकी, लेकिन जब शिक्षाप्रद कथाएं जिनसे हम शिक्षाएं ग्रहण करेंगे, एक एक कथा इतनी सुंदर शिक्षा देती है, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि जयंत ने कई स्थानों पर ऐसे कार्य किए हैं। इंद्र का पुत्र है तो अहंकार है, ऐश्वर्य है, जैसे कुंती महारानी समझाती हैं कि जिसके पास ये चीजें आ जाती हैं वो वैसे ही मद में हो जाता है। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एदमान मदपुमान। तो इसीलिए जयंत उसने भी किया था। नारद मुनि समझाने लगे कि एक समय एक व्यक्ति था जिसने बड़ा सुंदर बगीचा बनाया था, बहुत सुंदर सुंदर फूल उसमें लगाए, बड़ी अच्छी तरह से उसको सजाकर रखता था, लेकिन वो चाहता था कि कोई उसमें जाए नहीं क्योंकि वो फूल केवल भगवान के लिए थे। ये देखिए उद्देश्य होता है हमारे कार्यों का। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में भगवान समझाते हैं, स्वयं बोलते हैं कि जहां भी मेरा मंदिर हो वहां पर बगीचा होना चाहिए उसके सामने, और उस बगीचे में से फूल तोड़कर रोज अर्पण होने चाहिए भगवान को। ये भगवान का आदेश है। तो अगर हम बगीचा लगाएं भी तो हमें अपने लिए नहीं बना लेने चाहिए फूल, ये भगवान के लिए। तो उस व्यक्ति ने बहुत सुंदर बगीचा बनाया और फिर उसने ऐसा किया कि उस सारे बगीचे की दीवारें बहुत ऊंची ऊंची कर दी, बहुत ऊंची दीवारें कि कोई आ नहीं सके। जब दीवारें ऊंची होती है तो कष्ट होता है आने के लिए। अभी हम कुछ दिन पहले ऐसे एक स्थान पर गए थे जहां बहुत ऊंची ऊंची दीवारें थी, अफकोर्स वहां फूल नहीं थे, फूल्स थे, FOOLL, वो जेल थी, तो बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें थी उसकी। तो उसने ऊंची ऊंची दीवारें बनाई ताकि कोई आ नहीं सके और वहीं पर अपना घर बनाया, और ऐसे घर बनाया कि अगर बगीचे में जाना है तो उसके घर से होकर ही जाना पड़े, कोई बाहर से नहीं जा सकता। अर्थात वो चाहता था कि कोई फूलों को स्पर्श नहीं करे। और फिर वो रोज अपनी पत्नी के साथ उन फूलों को तोड़ता, उसके हार बनाता और फिर भगवान को अर्पण करता, कुछ दो तीन हार ब्राह्मणों को अर्पण कर देता, भक्तों को अर्पण करता। तो इस तरह से वो रह रहा था। लेकिन क्योंकि उसके बगीचे की सुगंध इतनी अच्छी थी कि इंद्र का पुत्र जब रात्रि के समय क्रीड़ा करने आता तो वो वहीं स्थान पर आता और उन फूलों को उठाकर ले जाता। तो जब दो चार दिन ऐसे हुआ तो बड़ा इसको दुख हो गया कि इतनी ऊंची दीवार बनाई है, घर भी बनाया है, फिर कौन चोरी करके ले जाता है? कोई तो आ नहीं सकता पृथ्वी से, जमीन से, कोई ऊपर से ही आता है। तो एक रात को उसने देखा तो जयंत आया, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाया, वो उठाकर ले गया। तो फिर उस समय नरसिंह देव की कृपा से नरसिंह देव का निर्माल्य उसने वहां पर रखा। अगले दिन जब जयंत आया तो उसने फिर से गलती से उसने उसको लांग लिया जब वो फूल तोड़ने गया। तो उसको लांगने के कारण जब वो फूल तोड़कर वापस जा रहा था तो अपने रथ पर चढ़ नहीं पाया। नारद मुनि ये कथा सुनाते हैं। तो फिर उसका जो सारथी था उसने कहा मैं तो रुक नहीं सकता, समय हो रहा है, मुझे तो जाना है। ड्राइवर की ड्यूटी थी, टाइम खत्म हो रहा था उसका। उसने कहा मुझे तो जाना है, अभी रात्रि समाप्त होने वाली है और दिन में हम लोग रह नहीं सकते। तो फिर लेकिन जयंत ने कहा मैं क्या करूंगा, अभी मैं चढ़ नहीं पा रहा हूं इस पे। तो उसने कहा कि आपने शायद नरसिंह देव के निर्माले को लांग दिया है गलती से, तो आप ऐसा कीजिए कि परशुराम जी 12 वर्षों तक एक यज्ञ कर रहे हैं, द्वादश वर्ष यज्ञ, और उस यज्ञ में ब्राह्मणों का जब भोजन हो जाए तो जाके उस स्थान को साफ कीजिए, उनकी झूठन को साफ कीजिए, और अगर 12 वर्षों तक आप ये करेंगे तब इस अपराध से मुक्त हो पाएंगे। तो फिर जयंत गए और उन्होंने 12 वर्षों तक इस सेवा को किया और उसके बाद वो मुक्त हो पाए। देखिए कितना महत्व भक्तों के लिए पुराणों में दिया जाता है कि जो भक्तों ने जिस यज्ञ में भगवान के महाप्रसाद को अर्पण किया है उसके केवल स्थान को साफ करना, उनकी झूठन को साफ करने से कितने बड़े अपराध से हम लोग बच जाते हैं, उससे हम लोग बच सकते हैं। तो सारे देखा जाए तो सारे अपराधों का एक बड़ा सरल उपाय है वैष्णव सेवा। चाहे कोई भी उपाय, कोई भी आपने अपराध क्यों ना किया हो, भगवान के प्रति किया हो तो भी वैष्णव सेवा, क्योंकि वैष्णव प्रसन्न तो भगवान आंख बंद करके आपको सब दे देंगे, जो भी चाहिए, कुछ नहीं देखेंगे। वैष्णव अपराध उसका भी इलाज एक ही है, वैष्णव सेवा। तो अगर हम लोग देखें तो एक दृष्टि से भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने का रहस्य है वैष्णव सेवा। अगर कोई वैष्णव सेवा नहीं कर पाता या वैष्णव सेवा नहीं करता तो चाहे कितनी ही भगवान की सेवा क्यों ना करे, कितने ही शास्त्रों को क्यों ना पढ़ ले, कितना ही तप, कितना ही ब्रह्मचर्य, कितनी ही पूजा आराधना वो कर ले, किन सब व्यर्थ है। क्योंकि भगवान के पास जाने का मार्ग भक्तों के द्वारा है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाया महाजनो येन गतास पंथा। जो पंथ, जो मार्ग जाने के लिए है वो है महाजनों के द्वारा, भक्तों के द्वारा। तो इसीलिए जब जयंत ने जाकर 12 वर्षों तक ये सेवा की तब फिर जाकर वो मुक्त हो सका। तो फिर उस समय शांतनु महाराज को भी यही कहा गया कि आप भी जाइए और यज्ञ में 12 वर्षों तक आप इस झूठन को साफ कीजिए, और शांतनु महाराज ने किया। आज भी कई संप्रदायों में जब किसी को दंड देना होता है तो ऐसे दंड दिए जाते हैं। बड़े हमने सुना है कि कई बड़े बड़े लोगों को दंड देना होता है तो उनको कहते हैं कि आप मंदिर की या गिरजाघर की या गुरुद्वारे की सीढ़ियों को साफ कीजिए, जाकर लोगों की चप्पल उठाइए, ये सेवा करने के लिए कहा जाता है। हाँ, उनको दंड के रूप में दिया जाता है, लेकिन ये दंड नहीं होता है। श्रील प्रभुपाद ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में इतना सुंदर वातावरण बनाया है कि भक्त इसको हृदय से करते हैं। चप्पल सेवा या अन्य साफ सफाई, मंदिर मार्जन, ये चैतन्य महाप्रभु ने सिखलाया है। चैतन्य महाप्रभु ने जब गुंडीचा लीला की तो उसमें सिखलाया कि कैसे मार्जन करना चाहिए, हृदय का मार्जन कैसे होता है। मंदिर मार्जन से हृदय मार्जन, ये चैतन्य महाप्रभु ने सिखलाया। कैसे उन्होंने गुंडीचा मंदिर को थोड़ा भी गंदा नहीं रहने दिया, छोटी छोटी गंदगी को साफ किया। पर आचार्य समझाते हैं अपनी टिप्पणियों में कि चैतन्य महाप्रभु समझा रहे थे कि ये जो मंदिर है, जो गुंडीचा मंदिर था, ये मंदिर हमारे हृदय के समान है, और अगर अपने हृदय को साफ करना है तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है हमें। इतना भी कण गंदगी का अगर हृदय में रह जाए तो फिर कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती है। चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मार्जन क्यों कर रहे थे? चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मार्जन कर रहे थे ताकि जगन्नाथ जी वहां पर आकर विराजमान हो। इसी तरह वो दिखला रहे थे कि हमारा हृदय, और वो ये दिखला रहे थे कि अगर थोड़ा भी कण आपने छोड़ दिया जगन्नाथ जी के, तो जगन्नाथ जी आएंगे नहीं, विराजमान नहीं होंगे। इसलिए बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने साफ किया, बार बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बार बार साफ कर रहे थे। धूल का ढेर लग रहा था, और फिर पानी से साफ किया, अपने कपड़े से, स्वयं अपने कपड़े से उन्होंने स्थान को साफ किया। चैतन्य महाप्रभु दिखला रहे थे कि अगर अपने हृदय में भगवान को लाना चाहते हैं, कृष्ण को लाना चाहते हैं, तो साफ करना चाहिए, मार्जन करना चाहिए। और ये मार्जन की क्रिया क्या है, कैसे होता है हृदय का मार्जन? जैसे हम मंदिर का मार्जन करते हैं, भगवान की सेवा में लगते हैं, इसी प्रकार हृदय का मार्जन है। जब तक हृदय परिवर्तन नहीं होगा, हृदय का मार्जन नहीं होगा, हृदय शुद्ध नहीं होगा, भक्ति का कोई लाभ नहीं है। हजारों हजारों वर्षों तक भी तपस्या, भक्ति, तथाकथित भक्ति करके भी हम कृष्ण को नहीं पा सकते अगर हृदय का मार्जन नहीं हो रहा है। और हृदय के मार्जन की प्रक्रिया क्या है? चेतो दर्पण मार्जनम, भगवान के नाम का उच्चारण करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बड़ा सरल है, कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं, कोई वैराग्य की आवश्यकता नहीं। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहैतुकम्। अगर हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु, आशु यानी बहुत जल्दी उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न होता है? ज्ञान और वैराग्य। तो इसलिए हमारा बाहरी दिखावा, बाहरी वैराग्य, ये बाहरी ज्ञान, ये सब व्यर्थ है। इसलिए श्रीमद् भागवत के पहले ही स्कंद में वो बतलाते हैं, जब ये कहते हैं कि वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता, वो कहते हैं कि अगर इसके द्वारा आपके हृदय में कृष्ण भक्ति, कृष्ण कथा के प्रति रुचि नहीं है, न उत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। तो इसीलिए हमें देखना चाहिए कि भगवान कृष्ण की कथाएं, विश्वक्सेन कथा सुया, उनकी कथाओं में हमें रुचि उत्पन्न हो, हमें श्रवण में रुचि उत्पन्न हो। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, जितना हम सुनेंगे, जितना गुणगान उनका सुनेंगे, हमारे हृदय से द्वेष कम होगा। ये द्वेष जब हम अन्य जीवों के प्रति दिखलाते हैं तो दरअसल ये अन्य जीवों के प्रति द्वेष नहीं है, ये कृष्ण के प्रति द्वेष है। कृष्ण के प्रति द्वेष अन्य जीवों के समक्ष या अन्य जीवों के ऊपर हम लोग निकालते हैं, द्वेष कृष्ण से है। इसीलिए जब हम इस द्वेष को कम करना चाहते हैं तो पहले अन्य जीवों के प्रति हमें द्वेष कम करना पड़ता है, फिर अपने आप कृष्ण से द्वेष नहीं रह जाता। और जब हम उनका गुणगान सुनते हैं कानों के द्वारा, तो ये द्वेष अपने आप हृदय से चला जाता है, हृदय शुद्धिकरण होता है। क्योंकि एक द्वेषी व्यक्ति कभी भी किसी दूसरे का गुणगान नहीं सुन सकता, ये द्वेषी व्यक्ति के लक्षण है, कभी नहीं सुन सकता वो किसी भी दूसरे का गुणगान, उसको केवल अपना गुणगान सुनना होता है। और इसी तरह न वो किसी दूसरे का और न कृष्ण का गुणगान सुन पाता है। लेकिन जब हम ज्यादा से ज्यादा कृष्ण का गुणगान सुनते हैं, तो एक ये कृष्ण का गुणगान है, दिव्य स्तर पर है, और दूसरा क्योंकि ये गुणगान हम सुन रहे हैं, उसको हम लोग अच्छा मान रहे हैं, तो फिर हमारे हृदय से वो द्वेष को निकाल देता है, गंदगियों को निकाल देता है, हृदय को शुद्ध करता है। इसीलिए ऐसी कथाएं भगवान की, इनको हमें बड़े ध्यान से सुनना चाहिए और इनसे शिक्षाएं ग्रहण करनी चाहिए। विशेष करके जैसे हम लोग अभी चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं, तो शांतनु महाराज के जीवन से हम लोग देखते हैं इस नरसिंह पुराण की कथा से कि कैसे भगवान से संबंधित चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए, और भगवान से क्या संबंधित है, क्या क्या चीजें संबंधित हैं। जैसे शिव जी ने बतलाया पार्वती देवी को, तदिया नाम सम अर्चनम, बतला रहे थे कि आराधना नाम सर्वेशां विष्णु आराधना परम। सारी आराधनाओं में, बहुत सी आराधनाएं हैं, लेकिन विष्णु आराधना परम शिव जी कहते हैं सबसे बड़ी आराधना है। लेकिन साथ साथ वो कहते हैं उससे भी ऊपर कोई और चीज है, और वो क्या है, तदिया नाम सम अर्चनम। तदिया अर्थात ऐसी चीजें जो भगवान से संबंधित हैं। तत् तत् साधारणतः शास्त्रों में, उपनिषदों में भगवान को संबोधित करते हैं, तत्त्वम असी, तो तत् अर्थात भगवान। तो तदिया नाम सम अर्चनम, तदिया अर्थात ऐसे चीजें जो भगवान से संबंधित हैं। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं, जैसे हमने वर्णन किया निर्माल्य, ये भगवान से संबंधित है, भगवान के वस्त्र, भगवान के भोजन के समान, उनकी थाली, जो भी चीज भगवान से संबंधित है, तदिया नाम समर्चना, उसका बड़ा आदर सम्मान करना चाहिए। और साथ ही साथ सबसे ज्यादा संबंधित भगवान से हैं भगवान के भक्त, इसलिए भगवान के भक्तों का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। जब हम अनजाने में भी भगवान के भक्तों का अनादर कर बैठते हैं, तब फिर चाहे हम किसी भी स्तर पर क्यों ना हो, कितनी ही भक्ति हमने क्यों ना की हो, हजारों वर्षों तक अगर तपस्या ही क्यों ना की हो, भगवान के नामों का उच्चारण ही क्यों ना किया हो कई वर्षों तक या कई हजार वर्षों तक, लेकिन वो सब व्यर्थ हो जाता है अगर हम भगवान के भक्तों के प्रति अपराध कर बैठते हैं। और ये बात चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीला में बड़ी स्पष्ट रूप से दर्शाई है। अपनी ही मां को भी उन्होंने क्षमा नहीं किया। सची देवी ने जब अद्वैत आचार्य के प्रति अपराध किया था, और अपराध भी क्या था, कोई ऐसा बड़ा अपराध नहीं किया था कि जहां उन्होंने हत्या कर दी हो या कोई सामने जाकर अपमान कर दिया हो, केवल उन्होंने ये कहा था, ये सोचा था कि विश्वरूप जो सन्यासी बन गया, जो चला गया यहां से, मेरे घर से, मेरा बड़ा पुत्र, तो इसका कारण अद्वैत आचार्य है, क्योंकि इनके घर ही जाता था, भागवत सुनता था, और फिर इन्होंने ही उसका दिमाग खराब कर दिया। ऐसा होता है ना, जब तक हमारे घर में कोई आपत्ति नहीं आती, हमें वो व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है। मंदिर में हम लोग जाते हैं, ब्रह्मचारी इसको देखते हैं, बहुत अच्छे हैं, पता चला उस ब्रह्मचारी ने आपके बेटे को ब्रह्मचारी बना दिया, तो बस फिर दक्ष की तरह शाप दे देते हैं, तुम्हारा सत्यानाश हो, कभी घर में नहीं रहो। है दक्ष ने भी नारद मुनि को यही दिया ना, जब नारद मुनि ने उनके सारे पुत्रों को ब्रह्मचारी बना दिया, तो उन्होंने शाप दे दिया, कभी घर पे नहीं, एक स्थान पर कभी नहीं रह पाओगे तुम, दक्ष समझा रहे थे कि तुम्हें क्या पता भक्ति कैसे करते हैं, नारद मुनि से कह रहे थे, और किसी से कहा होता तो फिर भी ठीक बात थी। पहले गृहस्थ बनना चाहिए, घर के चीजों को देखना चाहिए, कष्टों को देखना चाहिए, और फिर जाके संन्यास लेना चाहिए, ये सही मार्ग है। लेकिन तुमने डायरेक्ट कर दिया, ये गलत है। एक्चुअली गलत नहीं है, दरअसल दो प्रकार के मार्ग होते हैं। एक मार्ग जहां व्यक्ति ज्ञान लेता है, उसको समझता है और फिर उसका साक्षात्कार करता है, ये एक मार्ग है। दूसरा मार्ग, व्यक्ति ज्ञान लेता है, उसको समझता है, उसका अनुभव करता है और फिर साक्षात्कार लेता है, ये गृहस्थ जीवन है। तो दो प्रकार के जीवन है, दोनों में साक्षात्कार होता है। गृहस्थ जीवन में साक्षात्कार कुछ ज्यादा ही अच्छा होता है, लेकिन थोड़े समय बाद होता है, अनुभव के बाद। और एक मार्ग है जहां अनुभव नहीं किया जाता, पहले ही साक्षात्कार हो जाता है कि क्या कष्ट हो सकते हैं इस जगत में। तो फिर ऐसे जीवन में तो चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने लीलाओं में ये दर्शाया कि जैसे शची माता ने जब अद्वैत आचार्य के प्रति ऐसा अपराध किया, तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको क्षमा नहीं किया जब तक उन्होंने अद्वैत आचार्य के चरण धूलि अपने सर पर नहीं लगाई। तो देखिए, वो चैतन्य महाप्रभु और कौन है शची माता, कोई साधारण स्त्री नहीं है। लेकिन उदाहरण से दिखला रहे थे कि अगर कोई भी व्यक्ति वैष्णवों के प्रति अपराध करता है तो वो क्षमा का योग्य नहीं है, उसको क्षमा नहीं दी जा सकती, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे उनकी स्वयं की माता ही क्यों ना हो। इसीलिए हृदय को शुद्ध करने के लिए वैराग्य आवश्यक है। चैतन्य लीला में ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। महाप्रभुर भक्त गणेर वैराग्य प्रधान, जहां देखी प्रीति है न गौर भगवान, ये वर्णन है। चैतन्य महाप्रभु को प्रीति या आनंद कब आता है, जब वो भक्तों के हृदय में इस वैराग्य को देखते हैं, जहां उनकी आसक्ति नहीं है, उस वैराग्य को देखते हैं जिसके द्वारा उनका हृदय शुद्ध हो रहा है। क्योंकि वो आए ही है इस चीज को समझाने के लिए। चैतन्य महाप्रभु के आने का उद्देश्य ही यही है, शिक्षार्थम एकम, यही एक शिक्षा देने आए हैं वो। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा, शिक्षार्थम एकम पुरुषम पुराणम, श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी, कृपां बुधियस्तब हम प्रपद्ये। ये चैतन्य महाप्रभु हैं, वो केवल आए हैं वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा, शिक्षार्थम एकम, यही शिक्षा देने आए कि हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो और हम लोग भगवान की भक्ति बड़े शुद्ध हृदय से प्रेम से कर सकें। और सारे शास्त्रों का, सारे उपनिषदों का, इतिहास का, संहिताओं का यही उद्देश्य है कि हम लोग भगवान के नाम का उच्चारण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। 5 मिनट हैं, किसी के कोई प्रश्न, कोई टीका या टिप्पणी हो तो कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम लोग भगवान के दर्शन करेंगे।